ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता के कारण राजधानी में सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया। दिल्ली भाजपा कल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव करेगी। दिल्ली विधानसभा का सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना 25 नवंबर को होगी और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया है। आदेशों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और औद्योगिक संघ फिक्की, एसोचेम और सीआईआई के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री राय ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेव 4 के प्रावधानों के तहत दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। तमाम नए नए स्टेप, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करना हो, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करना हो, बायोमास बर्निंग को कंट्रोल करना हो, उसके लिए स्टेप ले रही है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुरुग्राम के उपायुक्त ने भी सभी निजी संस्थानों और कॉरपोरेट दफ्तरों को 50% वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने की सलाह दी है। उपायुक्त कार्यालय ने बताया कि वायु प्रदूषण के गंभीर प्रभाव को देखते हुए ये निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन समिति के निर्देशों के तहत लिया गया है। ये निर्णय अगले आदेश तक लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने भी 23 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस दौरान केवल ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने भी 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं। मेरठ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 375 पर पहुंच गया है। जिले में वायु प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेप प्रणाली लागू कर दी गई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 7 बजे शाम को 408 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कई भागों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 को पार कर गया। दिल्ली के अशोक विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 442, आनंद विहार में 434, जहांगीरपुरी में 443, मुंडका में 438, रोहिणी में 444 और वजीरपुर में 450 दर्ज किया गया। उधर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण के रोकथाम में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 1500 वर्ग किलोमीटर में फैली दिल्ली में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए सिर्फ 40 स्टेशन काफी नहीं है। श्री यादव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण के लिए कोई सकारात्मक काम नहीं कर पाई, जिसके चलते दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली भाजपा कल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री आवास की सजावट को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देना होगा। श्री सचदेवा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने 2022 में मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण के बाद कोई निर्माण कार्य नहीं किया। उन्होंने बताया कि विभाग ने 2024 में फिर से इन्वेंटरी सूची बनाई तो वहां अत्यधिक महंगे सामान मिले।
मुख्यमंत्री के घर में सरकार ने एक मुट्ठी भर चीजें दी थी, वो लिस्ट है। शिशमल दोबारा बनता है 2 सालों में, वहाँ 8 पन्नों की इन्वेंटरी कैसे बन गई? वो सामान आया कहाँ से? हमारा तो एक सवाल है कि मुख्यमंत्री के घर में जो सरकारी सामान पीडब्ल्यूडी कह रही है, हमने दिया नहीं, हमने लगाया नहीं, सरकारी एजेंसी मना कर रही है, तो प्राइवेट वेंडर्स कौन है जिन्होंने आपको ये सामान दिया? अरविंद केजरीवाल खुद सामने आके बताएं।
दिल्ली विधानसभा का सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। सुश्री आतिशी के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद ये पहला सत्र होगा। दिल्ली विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा की बैठक अस्थायी तौर पर 29 नवंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है। सचिवालय के अनुसार कार्य की आवश्यकता होने पर सदन की बैठक बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले इस महीने की 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगेगी। संसद का शीतकालीन सत्र इस महीने की 25 तारीख से आरंभ होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संसद की कोई बैठक नहीं होगी। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि विशेष सारांश पुनरीक्षण 2025 29 नवंबर 2024 को पूरा किया जाएगा और अंतिम नामावली अगले साल 6 जनवरी को प्रस्तुत की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनावी रिकॉर्ड में परिवर्धन, विलोपन या संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां इस महीने की 28 तारीख तक दर्ज किए जा सकते हैं। श्री कृष्णमूर्ति ने बताया कि इसके लिए पोर्टल या मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान का अगला चरण 23 और 24 नवंबर को निर्धारित किया गया है, जिसमें मतदाता अपने नामों की सटीकता की पुष्टि कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव 2024-25 की मतगणना 25 नवंबर को की जाएगी। डूसू चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी विकृतियां दूर करने की शर्तों पर दिल्ली विश्वविद्यालय को 26 नवंबर या उससे पहले मतगणना करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि सुबह के कॉलेजों या विभागों या संस्थानों या केंद्रों को सवेरे 8 बजे से और शाम के कॉलेजों या विभागों या संस्थानों या केंद्रों को दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अब मोमेंटम 2.0 दिल्ली सारथी ऐप के माध्यम से ASI द्वारा संरक्षित स्मारकों के टिकट खरीदे जा सकते हैं। DMRC ने बताया कि इस साझेदारी का उद्देश्य ASI स्मारक टिकट और DMRC यात्रा टिकट दोनों की खरीद के लिए एक ही मंच प्रदान करना है। DMRC के अनुसार QR आधारित टिकट प्रणाली विकसित की जाएगी, जो दिल्ली मेट्रो सेवा और ASI द्वारा संरक्षित स्मारकों में प्रवेश को सहज बनाएगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने आज दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर छत पर सोलर पैनल लगाने वाले वेंडर और मूल्य सूची की पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली सोलर पॉलिसी क्या है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिसका काम तेज गति से चल रहा है।
750 मेगावाट बिजली हम रूफटॉप सोलर के माध्यम से दिल्ली में प्रोड्यूस कर सके, इसके तहत एक बड़ा कदम हम ऑलरेडी उठा चुके हैं। हमने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है कि दिल्ली सरकार की हर बिल्डिंग के ऊपर हम रूफटॉप सोलर लगाएंगे। वो ऑलरेडी अपने टेंडरिंग स्टेज की तरफ मूव कर रहा है, तो चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, दिल्ली सचिवालय हो, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज हो, उन सब पर रूफटॉप सोलर का इंस्टॉलेशन किया जाएगा।
वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूर्य घर योजना को आधार बनाकर अपनी दिल्ली सोलर पॉलिसी बनाई है। उन्होंने कहा कि बेहतर होता कि दिल्ली सरकार अलग योजना बनाने की बजाय केंद्र सरकार की सूर्य घर योजना को ही दिल्ली में लागू कर देती, ताकि दिल्ली वालों को केंद्र की विस्तृत योजना का लाभ मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में धन उपलब्ध कराने के लिए बिटकॉइन का अवैध तरीके से इस्तेमाल करने में कथित संलिप्तता के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले की फिर आलोचना की है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले में जांच की मांग की। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और उनसे इस मुद्दे पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने को कहा।
करोड़ों करोड़ रुपए इसमें इन्वॉल्व है, 235 करोड़ जो हमें सुनने को मिल रहा है। हम चाहेंगे कि राहुल जी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी तरफ से सफाई भी दे कि क्या उन्होंने नाना पटोली को निर्देशित नहीं किया, क्या सुप्रिया सुले जी जिस प्रकार से निर्देश दे रही है इसके पीछे का हकीकत क्या है।
पार्टी प्रवक्ता ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उनके विरुद्ध विपक्षी नेताओं की साजिश के आरोपों को खारिज किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दूसरे दिन आज आगंतुकों में काफी उत्साह देखा गया। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जारी इस मेले की थीम विकसित भारत 2047 है। हमारे संवाददाता ने बताया कि शाम के समय मेले में बड़ी संख्या में आगंतुक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंडपों में खरीदारी के लिए आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
मेले में आ रहे लोग विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बनाए गए पवेलियनों में जाकर विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर और हस्तशिल्प कला का आनंद ले रहे हैं। चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देशों के 3000 से अधिक प्रदर्शक मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेले में आए ईरान और दुबई के प्रदर्शकों ने बताया कि व्यापार मेले में सुरक्षा और सुविधाओं का अच्छा इंतजाम किया गया है।
मेरा नाम महमूद है, मैं ईरान पे हूँ। मेरा प्रोडक्ट केसर, इलायची, ड्राई फ्रूट है। पूरा जो एग्जीबिशन का काम वाला है वो लोग सब हमारा हेल्प कर रहे हैं और पुलिस ऑफिसर सब हमारा सिक्योरिटी सेफ हेल्प कर रहा है।
मेरा नाम विवेक है, हम यूएई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए ITPO का काफी सपोर्ट है। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो हॉल्स हैं वो बहुत अभी उन्होंने जो नए बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। कस्टमर इजीली अपना रास्ता और एंट्री डिसाइड कर सकता है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज मेले में MSME मंडप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की और उनके उत्पादों की सराहना भी की। मेले के टिकट ITPO की आधिकारिक वेबसाइट, DMRC ऐप और दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा 55 स्टेशनों के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदे जा सकते हैं। आगंतुक सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक मेले का आनंद ले सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
राष्ट्रीय राजधानी में प्याज की आपूर्ति के लिए आज नासिक से कांदा एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1336 टन प्याज लेकर दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पहुंची। इस प्याज को शहर के विभिन्न हिस्सों में बिक्री के लिए भेजा जाएगा। रेल रेक द्वारा प्याज की विश्वसनीय और कम खर्च पर आपूर्ति के लिए प्याज का बड़े पैमाने पर परिवहन किया जाता है। रेलवे के अनुसार इस पहल से नासिक क्षेत्र के प्याज किसानों को थोक परिवहन के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व का लाभ मिला है। रेलवे ने बताया कि बड़े पैमाने पर प्याज की ढुलाई से दिल्ली में प्याज की उपलब्धता में वृद्धि हो रही है। उत्तर रेलवे ने पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र की डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत की है। उत्तर रेलवे ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य पेंशनभोगियों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के बारे में जागरूकता फैलाना है। दिल्ली में आज सवेरे हल्का कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री कम 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि सवेरे के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने खराब वायु गुणवत्ता के कारण राजधानी में सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया। दिल्ली भाजपा कल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव करेगी। दिल्ली विधानसभा का सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की मतगणना 25 नवंबर को होगी। और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।